मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ। भूमिका। मिस्र के यहूदियों के नाम पहला पत्र। शिविर पर्व मनाने का अनुरोध। अध्याय एक। मिस्र के यहूदी भाइयों को नमस्कार। यरूशलेम और यहूदिया में रहने वाले यहूदी भाइयों की ओर से शांति और कुशल क्षेम की शुभकामनाएं। ईश्वर आपका भला करे और अपने उस विधान का ध्यान रखे जो उसने अपने भक्त सेवक इब्राहीम, इसहाक और याकूब के लिए निर्धारित किया था। वह आप सबको ऐसा मनोभाव प्रदान करे कि आप उसकी आराधना करते रहें और सारे हृदय और मन से उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वह आपके हृदय में अपनी संहिता और आज्ञाओं के प्रति प्रेम भर दे, आपको शांति प्रदान करे, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ले, आपको क्षमा कर दे और विपत्ति के समय आपका त्याग न करे। हम इस समय आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। 169वें वर्ष जब देमेत्रियस राज्य कर रहा था, हम यहूदियों ने आपको ये लिखा था। इन दिनों हम पर घोर विपत्तियां पड़ी हैं। यासोन और उसके अनुयायियों ने पवित्र देश और राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, मंदिर का फाटक जलाया और निर्दोष रक्त बहाया है। तब हमने प्रभु से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हमने होम बलि और अन्न बलि चढ़ाई, दीप जलाए और भेंट की रोटियां मंदिर में रख दी। अब हम आपको फिर पत्र लिखकर 188वें वर्ष के किसलेव महीने में शिविर पर्व मनाने का अनुरोध करते हैं। मिस्र के यहूदियों के नाम दूसरा पत्र। शुभकामना। अरिस्तोबुलस को, जो अभ्यंजित याजकों के वंशज तथा राजा पतोले में उसके गुरु हैं, और मिस्र के यहूदियों को, यरूशलेम और यहूदिया के निवासियों तथा युदाह और परिषद का नमस्कार। आप स्वस्थ और सानंद रहें। अंतियोख की हत्या का वर्णन। ईश्वर ने घोर विपत्तियों से हमारी रक्षा की और वो राजा के विरुद्ध हमारा सहायक रहा, इसलिए हम उसके बहुत कृतज्ञ हैं। उसने स्वयं उन लोगों को भगा दिया जो पवित्र नगर पर आक्रमण करने आए थे। उस सेना का सेनापति एक ऐसी सेना लेकर जो अजेह जैसी लगती थी फारस गया था और वहां ननैया देवी के मंदिर में पुजारियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ननैया के पुजारियों ने षड्यंत्र रचा, अंतियोख देवी के साथ विवाह करने के बहाने अपने सहचरों के साथ वहां आया। उसने सोचा कि इस तरह दहेज रूप में मंदिर की भारी संपत्ति उसके हाथ आ जाएगी। ननैया के पुजारियों ने मंदिर की संपत्ति निकालकर प्रदर्शित की और अंतियोख ने थोड़े ही लोगों के साथ मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही पुजारियों ने द्वार बंद कर दिया। फिर वे छत का गुप्त दरवाजा खोलकर उन पर पत्थर फेंकने लगे और सेनापति को और उसके आदमियों को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अंतियोख के टुकड़े टुकड़े कर और उसका सिर काटकर उन्हें बाहर खड़े लोगों के सामने फेंक दिया। ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, उसने विधर्मियों को मृत्यु के हवाले कर दिया। नफ्थार, एक अनोखे द्रव की प्राप्ति। किसलेव मास के 25वें दिन हम मंदिर के शुद्धिकरण का उत्सव मना रहे हैं। आपको इसकी सूचना देना हमने उचित समझा, जिससे आप शिविर पर्व और उस अग्नि का स्मरणोत्सव मनाएं जो उस समय प्रकट हुई जब मंदिर और वेदी के निर्माता नहेम्या बलिदान चढ़ाते थे। जब हमारे पूर्वज फारस में निर्वासित किए जा रहे थे तो समय के भक्त याजकों ने चुपके से वेदी की अग्नि को एक सूखे कुएं की एक ऐसी गुफा में छिपा दिया जिसका पता किसी को नहीं चल सका। बहुत वर्ष बाद ईश्वर को ये उचित जान पड़ा कि फारस के राजा द्वारा वापस भेजे हुए नहम्या ने उन याजकों के वंशजों को बुला भेजा जिन्होंने आग छिपाई थी और उसे ले आने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने आकर कहा कि हमें वहां आग नहीं बल्कि गंदला पानी मिला। तो नहम्या ने उन्हें उसे ले आने को कहा। जब बलिदान की पूरी सामग्री रखी जा चुकी तो नहम्या ने याजकों से कहा कि वे लकड़ी और उस पर रखे हुए चढ़ावों पर वो पानी उंडेले। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बादलों के हट जाने से सूर्य प्रकट हुआ और वेदी पर से आग की लपटें जोरों से उठने लगीं। सब लोग आश्चर्य करने लगे। जिस समय होम बलि जल रही थी याजक और सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। योनातान पहले प्रार्थना सुनाते थे और अन्य लोग नहम्या के साथ उसके शब्द दोहराते थे। प्रार्थना इस प्रकार थी, प्रभु प्रभु ईश्वर सबके सृष्टा भीषण शक्तिशाली न्यायी और करुणामय, तू ही राजा, तू ही भला है, तू ही दाता है, तू ही न्यायी है, सर्वशक्तिशाली और शाश्वत है, तू सभी विपत्तियों से इज़राइल की रक्षा करता है, तूने हमारे पूर्वजों को चुना और पवित्र किया, तू अपनी समस्त प्रजा इज़राइल के लिए चढ़ाया हुआ ये बलिदान स्वीकार कर, तू अपनी विरासत सुरक्षित रख और उसे पवित्र कर, हमारे निर्वासितों को एकत्र कर जो गैर यहूदी राष्ट्रों में दास हैं, उन्हें मुक्त कर, जो तिरस्कृत और उपेक्षित हैं उन पर दया दृष्टि कर, जिससे गैर यहूदी राष्ट्र जान जाए कि तू हमारा ईश्वर है। जो लोग हम पर अत्याचार करते और घमंड के आवेश में हमारा अपमान करते हैं तू उन्हें दंडित कर, जैसा मूसा ने कहा था, तू अपनी प्रजा को फिर इस पवित्र भूमि पर स्थापित कर। इसके बाद याजक भजन गाते थे। जब होम बलि जल चुकी थी तो नहम्या ने बचा हुआ पानी बड़े पत्थरों पर उंडेलने का आदेश दिया। जैसे ही ऐसा किया गया पत्थरों से एक ज्वाला निकली जो होम बलि की वेदी से उठने वाली प्रखर ज्योति में विलीन हो गई। इस घटना की चर्चा फैल गई। फारसियों के राजा को भी बताया गया कि उस स्थान पर जहां याजकों ने आग छिपा रखी थी वहां वो पानी मिला था जिससे नहम्या और उसके साथियों ने होम बलि की सामग्री का शुद्धिकरण किया था। इस पर राजा ने घटना की जांच कराने के बाद वो स्थान घेर दिया और उसे पवित्र घोषित किया। राजा को उस स्थान से बहुत आमदनी होती थी और उसमें से वो उन लोगों को एक बड़ा हिस्सा देता जिन्हें उसने उस स्थान की देखरेख का प्रबंध सौंपा था। नहम्या के आदमियों ने उस द्रव का नाम नफ्थार रखा जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। प्रायः लोग इसे नफ्थाय कहते हैं।